भारत को चार खुटों में किसने बांधा। आइए सुनते हैं वर्चस्व श्री दिनेश कुमार के स्वर में मंडन मिश्र के साथ आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ के आगे की कथा आज नवी कड़ी में।
मंडन मिश्र अगले दिन मिलते हैं, मिलकर के शास्त्रार्थ का दिन तय होता है। बीच में पंच किसको बनाए, न्याय कौन करेगा। मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो मंडन मिश्र के ही बराबर की विदुषी थी, उतनी ही ज्ञान से पूरी थी। उसका नाम था उभय भारती देवी। शंकराचार्य कहते हैं हम इन्हें न्यायाधीश बनाते हैं, ये न्याय करेंगी कि कौन शास्त्रार्थ में किसका तथ्य तत्वपूर्ण है। आश्चर्य होता है कि मेरी पत्नी को बना दिया। खैर, कहते हैं शास्त्रार्थ आरंभ होता है, कई दिन चलता है। उस विवरण में तो मैं नहीं जाऊंगा, वो भी बड़ा रोचक है। उसमें अंत में एक सीमा आती है जहां मंडन मिश्र कहते हैं मैं आपको समर्पित करता हूं। शर्त यह तय हुई थी जो हारेगा वो दूसरे को अपना जीवन समर्पित करेगा, या तो मंडन को शंकराचार्य या शंकराचार्य को मंडन समर्पित करेंगे। दोनों की आयु में भेद था। शंकराचार्य वॉज जस्ट अ स्मॉल बॉय, ऑलमोस्ट अ टीनेज, और मंडन लगभग 60 वर्ष की आयु के थे। ये जैसे ही मंडन मिश्र स्वीकार करते हैं कि आप के तथ्य विजयी हुए और उठ करके वहां से जाते हैं, उभय भारती देवी खड़ी होकर कहती हैं, ऐसे कैसे ले जाने दूंगी तुम्हें, अभी तो मैं हूं, मुझसे कर शास्त्रार्थ। ये तो तय नहीं हुआ था, लेकिन वो सामने आ गई। आदिगुरु शंकराचार्य हाथ जोड़ते, मां बाद में करना, पहले मेरे साथ शास्त्रार्थ कर, तू मेरे पति को ले जाएगा साथ में, मैं ऐसे जाने दूंगी। खैर, शास्त्रार्थ का दिन सुनिश्चित होता है। मंडन बीच में नहीं आते क्योंकि वह समर्पित हो चुके। उभय भारती देवी और आदि गुरु शंकराचार्य अब दोनों शास्त्रार्थ के लिए एक सामने बैठते हैं। उभय भारती देवी विषय छेड़ती है नव रस, नौ रसों का, और उस रस में वो चर्चा छेड़ती है काम रस की। जैसे ही चर्चा छेड़ती है शंकराचार्य कहते हैं मां मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे इसका बोध नहीं है। अच्छा तो बेटा फिर समर्पित हो जा, ये तो हाथ से पूरी बाजी चली जाएगी। मां समर्पित हो जा, बात छोड़, हम तो शास्त्रार्थ के लिए बैठे, इधर यू कन्विंस मी और आई विल प्रिवेल। नहीं ऐसा है मां, मुझे एक महीने का समय चाहिए। ओके कोई बात नहीं, ले ले, एक महीने में तू क्या करेगा, या तो ब्रह्मचर्य छोड़ेगा, गृहस्थ में जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य सोच रहे हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। उनके जो साथ के शिष्य हैं वो साथ ही साथ, जैसे हमारे यहां भी कोई चीज खराब होती है, अस यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये कहां से उभय भारती आ गई। ये चर्चा करते हुए महिष्मती से बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो अचानक जैसे ही जंगल शुरू होता है रोने चिल्लाने की आवाज आती है। सुन करके शंकराचार्य अपने शिष्य को कहते हैं अरे क्या हुआ, देख क्या। वो जाता है देखने के लिए, वापस आता है, गुरुदेव कोई राजा अमरूक है, कितनी उम्र होगी, 40 वर्ष, क्या हुआ, अचानक कुछ घबराहट हुई, और कहते मर गया है, शिकार खेलने आया था। अच्छा, शंकराचार्य की बुद्धि एकदम से काम करती है, अरे तुम लड़को फटाफट काम करो, आसपास कोई जगह जल्दी ढूंढो इससे पहले कि शरीर और शांत हो, जगह ऐसी ढूंढो जहां कोई हस्तक्षेप नहीं करे, और पानी अगर पास में हो जाए तो और भी अच्छी बात है, फटाफट करो। दोनों भागते हैं, देखते हैं एक छोटा सा टीला, उसमें खो बनी हुई, कोष्ठक बना हुआ, गुफा तो नहीं कह सकते, छोटी सी एक ओट बनी हुई। वापस आते हैं, मिल गई जगह साहब, मिल गई, अच्छा चलो फटाफट आओ, जल्दी आओ। दोनों को वो साथ लेते हैं, थोड़ा जल मंगाते हैं, जल लेकर के वो अपने आप को अवस्थित करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मेरे शरीर की रक्षा करने का दायित्व तुम दोनों का है, तुम दोनों अब सुनिश्चित रखना मेरे शरीर को आघात नहीं पहुंचे, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। ये कह करके मंत्रोच्चारण से वो काया प्रवेश, पर काया प्रवेश का प्रयोग करने लगते हैं। शिष्य कहते हैं, मन में उत्सुकता तो होती है ना, गुरुजी वापस आ जाओगे ना, तो चिंता मत करो आ जाऊंगा, मच्छंद्रनाथ को भी तो, मत्स्येंद्रनाथ को भी तो गोरक्षनाथ वापस लाए थे, मुझे लाने के लिए ईश्वर है, तुम चिंता मत करो। और तत्काल वो अपनी काया से चेतना का थोड़ा सा अंश छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं अमरूक के शरीर में। अमरूक जाग जाते हैं, जाग जाते हैं, ओ राजा की जय हो, सब उल्लास में, राजा हैज कम बैक, ही हैज कम बैक। आजकल तो मेडिकल प्रोसीजर में 59 सेकंड्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ रिससिटेशन में लोगों को कई बार वापस लाते हैं, लेकिन उस समय वो एक डेढ़ घंटे का प्रोसीजर हो गया था। जब उनको उठा करके ले जाते हैं राजा को, राजा के तीन रानियां थी, जो तीसरी रानी थी वो बड़ी विदुषी थी। राजा जाते ही सबसे पहला एक अनाउंसमेंट करता है, क्या, मेरे सबसे बड़े लड़के को अभी इसी समय सिंहासन दो, क्योंकि राजा अब कौन है, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। लड़के को सिंहासन देते हैं, जो रानियां हैं वो कहती हैं, ही इज नॉट द सेम पर्सन, देयर समथिंग रॉन्ग, ये वो जीव नहीं है, सोचता अलग रूप से है, बात अलग रूप से, विचार धारणाएं सत्व की वर्षा हो रहे, तमस है ही नहीं, पता लगाओ व्हाट हैपेंड। पता लगाने के लिए गुप्तचर भेजे जाते हैं। जब गुप्तचर भेजे जाते हैं तो पता लगता है कि जहां राजा गिरे थे वहीं पास में एक छोटा सा टीला है, जिसकी एक खो में सुना है कि कोई योगी, ये दो तीन लोग बैठे हैं, कुछ वहां गड़बड़ है। जब टो लगाते हैं तो सारी पुष्टि आ जाती है। रानियां कहती हैं, अब ये क्या है क्या नहीं है, वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स, हमारा राजा वापस आ गया, हमारा काम बन गया। एक काम करो, इससे पहले कि योगी जागे और राजा मरे, योगी को भस्म कर दो, ना रहेगा उसका शरीर, ना ये वापस जाएगा। और वो पूरा एक प्लॉट बनाते हैं, और निर्णय ये था कि दो शिष्यों में से एक वहां बैठेगा, ड्यूटी देगा, दूसरा भिक्षा जाएगा लेने, क्योंकि रोटी तो खानी है। जिसकी ड्यूटी थी उस दिन, खाना आने में देर हो गई, भिक्षा आने में, उसको बाहर आना पड़ गया, वो ओट के बाहर आके वेट कर रहा है, उसको थोड़ी तंद्रा भी आ गई, वो झपकी भी लग गई। वो भिक्षा लेके दूसरा वापस आता है, वो आकर के कहता है, यार जलने की स्मेल आ रही है, कहां से आ रही है, और अंदर गुफा में से आ रही है। भागते हैं तो देखते हैं, क्योंकि इस बीच में षड्यंत्रकारियों ने तेल से भीगे हुए कपड़े पर खूब सारी कपूर रख के चिंगारी लगा के फूंक मार दी थी, वो ज्वाला बन गई। जैसे घुसते हैं शंकराचार्य जी को बचाने के लिए, देखते हैं शंकराचार्य जी पहले से खड़े हैं और थोड़े थोड़े पैर जले हुए, और शिष्यों को कहते हैं, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं आ गया हूं।